ஓம் சாந்தி. நமாஸ் ஷாம் கே சமய சபீ பாபா கே பியார் மே சமானே கா சாகர் கி கஹராய் மே ஜானே கா பஹுத் அச்சா அனுபவ் கர்தே ஹை. சப் தரஃப் மதுபன் கே சபீ ஸ்தானோ பர் ஔர் தேஷ் விதேஷ் மே இஸ் சமய விசேஷ யோக இத்தனி ப்ராஹ்மண ஆத்மாயே கர்த்தி ஹை தோ உஸ்கா வாயுமண்டல் கித்னா சக்திசாலி சாரோ ஓர் ஃபைல்தா ஹை. ஐசே லக்தா ஜேசே ஹம் சப் இஸ் ஆவாஜ் கி துனியா ஸே தூர் அப்னே சாந்தி கே உஸ் பரமானந்த கே அனுபவ் மே சமாயே ஹுயே ஹை. விசேஷ ஜோ 7 to 7:30 பஜே யோக சல்தா ஹை இஸ் யோக மே சபீ பஹுத் அச்சே ஔர் கஹரே அனுபவ் கர்தே ஹை. கை தோ யே கஹதே ஹை கி அம்ருத் வேலே ஸே பி பவர்ஃபுல் யோக ஷாம் கா ஹோதா ஹை. அம்ருத் வேலே கை பார் நீந்த கா வாதாவரண் ஹோனே கே காரண் சுஸ்தி ஆனே லக்தி ஹை. லேகின் ஷாம் கே சமய இஸ் நமாஸ் ஷாம் கே சமய ஜப் ஹம் சப் யோக கர்தே ஹை ஔர் ஏக் ஹி சங்கல்ப் மே ஏகாக்ர ஹோகர் கே பைத்தே ஹை தோ கித்னி சுந்தர் சாந்தி கா அனுபவ் சன்னாட்டே கா அனுபவ் ஹோனே லக்தா ஹை. ஐசே லக்தா ஹை சப் உட்தா பன்சி பன்கர் கே அப்னே வதன் கி சேர் கர் ரஹே ஹை. சாகார் வதன் ஸே அவ்யக்த வதன் ஔர் அவ்யக்த வதன் ஸே மூல் வதன் யே பஹுத் அச்சி யாத்ரா பஹுத் அச்சி ட்ரில் பாபா நே ஹம் சப்கோ சிகாயி ஹை. தோ விஷய கோ லேகர் கே ஆஜ் ஆப் சப்கே பீச் மே மே ஆயா ஹூ. பாபா கா இஸ் வர்ஷ கா விசேஷ ஹோம்வர்க் யாத் ஹோகா பாபா ஹம் சப்கோ லாஸ்ட் முரளி மே விசேஷ இஷாரா தே கர்கே கே கி ஜேசே ஆப் பச்சே உமங் ஔர் உத்சாஹ் மே ரஹதே ஹோ ஐசே அப்னே சாத்தியோ கோ பி உமங் உத்சாஹ் திலாஓ. ஜேசே குத் தீவிர புருஷார்த் கி லஹர் ஹை ஐசே சப்கே அந்தர் வோ லஹர் ஆ ஜாயே. ஸ்வ உபகார் ஔர் பர் உபகார் ஹோ சக்தா ஹை கி ஹம் சப் பர் உபகார் கர்தே கர்தே ஸ்வ உபகார் கர் லே ஹோ ஜாயே. லேகின் பஹலே ஸ்வ உபகார் ஃபிர் பர் உபகார் ஔர் ஹம் சப் நே ஜிஸ்னே பாபா கி ஸ்ரீமத் கோ யதார்த்த ரீதி ஸே பாலன் கியா ஹை பாபா கே கதம் பர் கதம் ரக் கர் கே ஜோ சல் ரஹே ஹை ஸ்வ உபகாரி பன் கே ஹை ஸ்வயம் ஸ்வயம் பர் உபகார் கர்தே ஹை. தீன் பர் பாபா நே காட்னே கே லியே கஹே பர் சிந்தன் பர் தர்சன் பர் மத் பாபா கஹதே ஹை தீன் பர் காட் தோ. ஜப் யே தீன் பர் கட் ஜாதே ஹை தப் பரோபகார் ஹம் கர் சக்தே ஹை. பர் சிந்தன் கட்டேகா தோ அப்னே ஆப் நேச்சுரல் ஸ்வ சிந்தன் மே ஆத்மா ரஹேகி. ஸ்வ சிந்தன் மே ரஹனா ஹி ஸ்வ உபகார் ஹை. जो आत्माएं अपने स्वचिंतन में रहती हैं, स्वाध्याय करती हैं, स्वयं को स्वयं पढ़ाती हैं, वो सहज परिवर्तन हो जाती हैं। इसलिए स्वचिंतन का अभ्यास हो जाए, शुभ चिंतक अपने आप बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र, जिसकी बहुत गहराई है, बाबा कई बार कहते हैं, जब आप बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाते हो तो माया का गला कट जाता है। अपने अनादि स्वरूप की स्मृति, अपने आदि पवित्र स्वरूप की स्मृति, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति और ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति, बहुत अच्छा स्वदर्शन चक्र हम इस तरह से घुमा सकते हैं। बचपन में पहले पहले हम सब ने स्वदर्शन चक्र जब घुमाना शुरू किया था तो समझते थे सतयुग के अंदर इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, द्वापर में इतने जन्म, ऐसे ऐसे पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे जन्म लिया, ऐसे ऐसे कलाएं कम हुई। लेकिन बाबा ने अभी अव्यक्त रूप में हम सबको इस तरह से सुदर्शन चक्र सिखाया है कि बच्चे अपने अनादि स्वरूप में परम धाम की ऊंची स्टेज में, उस मूल वतन में बाबा के समीप जाकर के विराजमान हो जाओ और बाबा की शक्तियों का अनुभव करो। चमकते हुए सितारे के रूप में आत्मा कैसे परम धाम में बाबा के सानिध्य में समीप रहती है। फिर अपने आदि स्वरूप को देखो, कितना सतो प्रधान शरीर है, सतो प्रधान प्रकृति है, क्या देवताओं की रायल चलन है, अपना वो देवताई स्वरूप इमर्ज करो। और फिर जब नीचे आए, द्वापर में आए, उस समय अपनी ही पूज्य स्वरूप की पूजा शुरू की और हमारे पूज्य स्वरूप से इतनी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी हो रही हैं, उस पूज्य स्वरूप को स्मृति में लाओ और संगम युग पर अपने भाग्य को देखो। स्वयं भगवान भाग्य विधाता वरदाता, बाप भी बनकर वर्षा दे रहा है, वरदाता के रूप में वरदान दे रहा है। इस प्रकार इस सुदर्शन चक्र का चिंतन करते करते उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, पर दर्शन अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये भी सो उपकार है। और फिर श्रीमत क्या कहती है, क्योंकि परमत का प्रभाव बहुत है और परमत के प्रभाव में आने वाली आत्माएं कई बार श्रीमत में भी अपनी और दूसरों की मत ऐड कर देती हैं। इसलिए सोपकारी आत्माएं श्रीमत पर सदा चलती रहती हैं। सबसे बड़ा सोपकार है अंतर्मुखी बन करके अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना, अपने आप को अंदर की शक्तियों से संपन्न बनाना। वो आंतरिक शक्तियां हमारी विकसित होती रहें, ये बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि जो आत्माएं अंदर से खोखली होती हैं, सिर्फ बाहर से ज्ञान सुनाती हैं, वो कोई भी परिस्थिति, कोई भी पेपर का सामना नहीं कर पाती हैं। इसलिए अंदर ही ज्ञान चिंतन करके, योग का अभ्यास करके, अंतर्मुखी होकर के अपने आप को चेक करना। और चेक करके, बाबा ने तीन चार दिन पहले कहा था, चेक करने से कई बार आत्मा दिल से कष्ट हो जाती है, चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक ही नहीं करो। तो अंतर्मुखी आत्माएं जो बहुत कम बाह्यमुखता में आती हैं, वो अपने आप को परख सकती हैं, अपने आप को सुधार सकती हैं, अपने को पढ़ा सकती हैं। ये बहुत बड़ा सो उपकार है। हमारी दीदी हम सबको एक बात बहुत अंडरलाइन कराती थी, दीदी मनमोहिनी कहती थी, अगर कोई को सुधरना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, तो अपना टीचर खुद बने। दूसरा कोई कितनी भी शिक्षाएं दे, कितनी भी बातें सुनाए, उसका प्रभाव इतना नहीं रहता है। लेकिन जो अपने आप को पढ़ाना जानता है, जो अपने आप से बातें करता है, जो अपने स्वचिंतन में रहता है, वो अपने आप चेंज कर लेता है। और अगर कोई बहुत कड़े और पुराने संस्कार छिपे हुए हैं, आप देखेंगे कि ऐसे साधारण जीवन में चलते चलते उन संस्कारों का पता नहीं चलता है जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती है, ऐसी वातावरण ऐसा बनता है, ऐसी वार्तालाप होने लगती है, तो वो छिपे हुए संस्कार प्रकट होने लगते हैं। उन कड़े संस्कारों पर हमारी कड़ी नजर रहे, उन संस्कारों का हम संस्कार कर सकें, उसके लिए बहुत दृढ़ता संपन्न तपस्या चाहिए, बहुत शक्तिशाली याद, और उसके लिए खुद को खुद समय देना पड़ेगा। अगर कुछ समय भी हम एकांत में बैठ करके एक बाबा की याद में समा जाते हैं, खो जाते हैं, और बाबा को ज्ञान सूर्य में अनुभव करते, उनकी किरणों को स्वयं पर एकाग्र करते हैं, तो अपने छिपे हुए संस्कार परिवर्तन होते हैं। ये सो उपकार है अगर कोई आत्मा अपने छिपे हुए संस्कारों को, स्वभावों को, ऐसी आदतों को जो बीच बीच में परेशान करने वाली है, उसको चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत अंतर्मुखी बन करके एकांत में जा करके बाबा की किरणों को एकाग्र करके, जैसे कोई लेजर किरणें डाली जाती हैं किसी स्थान पर, शरीर में भी अगर कोई रोग होते हैं तो आजकल किरणों से इलाज कर देते हैं। हम सभी भी बाबा की शक्तिशाली किरणें लेकर ऐसे संस्कार पर डालें ताकि वो संस्कार मेल्ट हो जाए, परिवर्तन हो जाए, फिर से इमर्ज न हो। जब तक जलाया नहीं है तब तक कभी भी बाहर आ सकता है। इसलिए इसके लिए एकांत की जरूरत है, एक बाबा के प्यार में समाने की जरूरत है। सौ उपकार के अंदर कोई भी ऐसी बातें हमारे सामने परिस्थिति के रूप में आए, अगर हम उसको नेगेटिव दृश्य को भी, नुकसानदेह दृश्य को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हैं, परिस्थिति रूपी पेपर पहाड़ नहीं बनता, लेकिन अगर हम उसको बहुत सरल रीति से, सहज रीति से बात को लेते हैं, तो पहाड़ जैसी बात भी बहुत सरल हो जाती, सहज पार कर सकते हैं। क्योंकि बातें तो हरेक के सामने कोई न कोई आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, जिसकी स्वस्थिति अच्छी है, जिसने ध्यान दिया है, स्वयं स्वयं पर अपनी स्थिति को जमाने पर परिस्थितियां आकर के क्रॉस कर जाती हैं, हलचल में नहीं लाती। वो आत्माएं घबराती नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हो गया, हलचल में नहीं आती, पार हो जाती, आई है बात खत्म हो जाएगी, तुरंत उतावले नहीं हो जाते, अधैर्य नहीं होते, भयभीत नहीं होते, बात आती है समाप्त हो जाती है। तो अगर हमने अपनी आप को पढ़ाया है, स्व स्थिति को अच्छा बनाया है, स्व उपकार किया है, तो अकल्याण के दृश्य में भी कल्याण क्या छिपा हुआ है बहुत धैर्यता के साथ उसे देखना होता है, समझना पड़ता है क्या इसके बीच में कल्याण है। जबकि दिखाई देता है सीन बड़ी दर्दनाक है या कल्याणकारी दिखाई दे रही है, उसमें भी क्या मुझे आत्मा का कल्याण है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, समय संगम का समय कल्याणकारी है, तो हमारा कल्याण इसमें कहाँ से हो सकता है। लेकिन अगर हम बहुत धैर्यवत होकर के उस बात को देखते हैं तो उसमें कल्याण का रास्ता निकल आता है, कुछ न कुछ रास्ता बाबा दे देता है। लेकिन अगर अधैर्य हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो जैसे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसलिए सो उपकार है कि हर आत्मा अपने आप को इतना समर्थ बनाए, इतना शक्तिशाली बनाए, जो कोई संस्कारों की परिस्थिति, कोई संबंधों के द्वारा, कोई आर्थिक रूप में, कोई सामाजिक रूप में, किसी रूप में भी कोई प्रॉब्लम आए उसका सामना कर सके, उसको पार कर सके, ये है सो उपकार। बाबा ने जो गुण और शक्तियां हम सबको दी हैं, जो ज्ञान का अनमोल खजाना दिया है, अगर मैं आत्मा उस खजाने को मनन करके, चिंतन करके उसकी अनुभवी मूर्त बनती हूँ, अनुभव की अथॉरिटी आ जाए, सिर्फ ज्ञान तक सीमित न रहे, लेकिन एक अनुभव की अथॉरिटी आ जाए कि ये मैंने अनुभव किया है, मैंने स्वयं का भी अनुभव किया है, मैंने बाबा के साथ का भी अनुभव किया है, उसकी शक्तियों का भी अनुभव किया है, तो अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए स्व उपकार यही है कि हम सबको स्व पर ध्यान दे करके हर गुण और हर शक्ति का अनुभव करना है, व्यर्थ संग से बचाना अपने आप को, क्योंकि संग का बहुत जल्दी रंग लगता है। अपने श्रेष्ठ संग का रंग दूसरों पर लगाना ये परोपकार है, लेकिन किसी के व्यर्थ संग के प्रभाव में आ जाना ये क्या है, ये अपना ही नुकसान है। इसलिए बाबा हम सबको कहते, बच्चे अपने ऊपर अपकार मत करो। अगर कोई व्यर्थ संग में गया जो समय शक्तियों को नष्ट करने वाला है, जो व्यर्थ बातें करता है, जिसके संग में जाने से अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति हो जाती है, उस संग से अपने आप को बचाना ये सौ उपकार है। आप सब डिटेल निकालेंगे तो सौ उपकार क्या क्या है, एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे सामने आती है कि मुझे तो अपने आप पर उपकार करना है। बाबा हमारा परोपकारी है, हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। कहता है, मैं तो जब परम धाम से सृष्टि मंच पर आता हूँ, ये मेरा आना ही परोपकार है। कल या परसों की मुरली में था, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है जो मैं ऊपर से आप बच्चों के बीच में इस पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ, ये परोपकार है। उसके अंदर हम बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावनाएं हैं, इतनी कल्याण की भावनाएं हैं, जो बाबा भी इस दुख धाम की, इस दुख की दुनिया में आता है, पतित दुनिया में आता है। बाबा ने हम बच्चों पर बहुत परोपकार किए हैं, किसी की कमी और कमजोरी को नहीं देखा। कोई कैसा भी बच्चा है, बाबा कहता, बच्चे तुमने मेरा बहुत अपकार किया है, अनजान में किया, जानबूझ करके तो नहीं किया, बहुत भावना से किया। लेकिन बाबा उसको अपकार शब्द देता है कि मुझे तुमने कण कण में कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया, कुत्ते बिल्ली में कह दिया, ये मेरा अपकार किया है। ने तो बहुत भावना से समझा बाबा, जिधर देखो उधर तू ही तू है, तू ही तू है। हमारी भावनाएं कितनी ऊंची थी, सब जगह भगवान है, वो देख रहा है, वही हम सबको चला रहा है, वही सृष्टि का संचालक है। बहुत ऊंची भावना से हमने उसको ऐसे शब्द उच्चारण किए, लेकिन बाबा कहता बच्चे कितनी बड़ी ग्लानी मेरी कर दी, पर उपकार किया कि अपकार कर दिया। हम बच्चों पर फिर भी उपकार करता, बच्चे तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये ड्रामा की नूंद है। बाबा की एक कल्याण की भावना देखो, कभी किसी बच्चे को दोषी नहीं ठहराता। कोई गलती भी कर रहा है, कोई कुछ यज्ञ का नुकसान भी कर रहा है, फिर भी बाबा का उसके प्रति बहुत प्यार है, रहम है, दया भाव है, क्षमा भाव है, उसके प्रति भी बहुत शुभ चिंतन भाव है, ये परोपकार है। जानता नहीं है क्या कौन क्या कर रहा है? बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, बच्चे जैसे पत्ता पत्ता हिलता है, ऐसे आत्मा रूपी पत्ते जहां पर भी कुछ करते हैं हिलते हैं, बाबा को फट से पता चल जाता है। जैसे इस शरीर के ऑर्गन्स के अंदर कहीं भी कुछ भी थोड़ी भी दर्द हो, कोई चींटी भी काट जाए, तो आत्मा को फट से महसूस होता है कि कुछ हो गया। अगर शरीर ठीक है, खून की गति ठीक है, चैतन्यता है, तो आत्मा फट से एक सेकंड भी नहीं लगता है उसको पता चलता है शरीर के किस कोने में क्या हो रहा है। ऐसे ही बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे इस सृष्टि पर तुम बच्चे जहां पर भी जो कुछ कर रहे हो मुझे फट से पता चल जाता है ये कहां क्या हो रहा है, लेकिन मैं बताता नहीं हूं, मैं बच्चों को सम्मान देता हूं, अपमानित नहीं करता, इशारा जरूर देता है, शिक्षाएं देता है, संगठन में दे देता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह करके उसके दिल को नहीं दुखाता, ये उसका परोपकार है। तो बाबा ने जैसे हम बच्चों को परोपकार की दृष्टि से बहुत उपकार किया है, ऐसे ही हम बच्चों को भी कहता है बच्चे तुम मनसा द्वारा, अपनी मधुर वाणी के द्वारा, अपने श्रेष्ठ संग के द्वारा, जो आपके संबंध में संपर्क में आत्माएं आती हैं, भले वो कैसी भी हैं, फिर भी उनके प्रति बहुत कल्याण की भावना रख करके, शुभ भावना रख करके उनको खुशी दो, उनको शक्ति दो, उनके उमंग उत्साह को बढ़ाओ, ये परोपकार है। कई आत्माएं चलते चलते निराश हो जाती हैं, होपलेस, जैसे कोई होप ही नहीं, कोई आशा ही नहीं, अपने संस्कारों से युद्ध करते करते, संगठन में चलते चलते जो आपसी संबंधों में टकराव होते हैं उसके कारण कई स्वभाव, कई संस्कार, कई पिछले हिसाब किताब जब सामने आ जाते हैं, तो ज्ञान योग की शक्ति न होने के कारण आत्माएं निराश हो जाती हैं, दिल से कष्ट हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं। ऐसी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाना, उनको खुशी दिलाना, उनको आगे बढ़ाना, उनको उड़ने के पंख दे देना, ये परोपकार है। अगर हम ऐसी परोपकारी आत्माएं, कुछ भी थोड़ी सी भी आत्माएं हैं जिनको ये रहता है कि संगठन में अगर कोई कमजोर है, तो उस कमजोर आत्मा की कमजोरी का वर्णन करके उसको और हताश न किया जाए, बल्कि उसकी कमजोरियों को देख करके समाते हुए उसको शुभ चिंतक स्थिति से, शुभ भावना से, बहुत स्नेह की शक्ति और सकास दी जाए, जैसे हमारी दादियां दे रही हैं। हम दादियों को बहुत नजदीक से देखते हैं कि उनके अंदर कितनी एक रहम की भावना, दया की भावना, परोपकार की भावना है। अगर कोई गलती करता है तो ये नहीं कहती तुम यहां से चला जा, कैसे तुम चेंज हो जा, कैसे अपने आप को परिवर्तन कर ले, उसके लिए इशारा देती हैं, स्नेह देती हैं, शक्ति देती हैं, अच्छे संग में रहने की सलाह देती हैं, ये परोपकार है। अपने साधन भी, अपनी इच्छाएं भी मार करके दूसरों को मान देना, जैसे बाबा सब कुछ करता और कराता है, अगर बाबा की लीला देखो, साक्षी होकर के देखो, इतना बड़ा बाबा का बेहद यज्ञ चल रहा है, एक साथ इतनी सारी कारोबार चल रही है, इधर योग शिविर चल रहे हैं, उधर विंग्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, पांडव भवन में भट्टियां चल रही हैं, यहाँ अकाउंट चेकिंग चल रही है, यहाँ कैड चल रहा है, इतना सारा एक साथ प्रोग्राम चल रहे हैं। और जो हमारी निमित्त आत्माएं हैं, हमारी दादियां हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, वो अपने शरीर के हिसाब किताब के कारण या किसी कारण से भी दूर होते हुए भी कैसे उनकी सकास, बाबा की सकास इस यज्ञ को आगे बढ़ा रही है, कितने कार्य करा रही है, कितने लोग अच्छे अच्छे अनुभव करते जा रहे हैं। अगर देखा जाए ये करण करावन हार की बड़ी गुप्त लीला चल रही है। आने वाली आत्मा इतनी तृप्त, इतनी संतुष्ट, इतनी भरपूर होकर के जाती हैं, जैसे सब कुछ पा लिया। पहले जमाने में हम देखते थे, अगर दीदी है, दादी नहीं है, या दादी है दीदी नहीं है, तो लगता था कोई मिसिंग है, कुछ चाहिए यहाँ पर। आज नहीं होते हुए भी इतना बड़ा यज्ञ कितनी फास्ट गति से सेवाएं कर रहा है, तो कौन कर रहा है? ये बाबा की गुप्त शक्तियां। बाबा अपना कार्य अपने आप सब कुछ कर करा रहा है, किसी बच्चे को भी निमित्त बना करके। हम सब का ये कर्तव्य बनता है, जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिनको भी बाबा ने किसी भी सेवा के निमित्त बनाया है, वो एक बाबा के राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें। बड़ा शुभ चिंतक वृत्ति से, शुभ भावना से, अच्छा विचारों में रमण करने की आदत डाल दें। कभी भी कोई ऐसी कमी और कमजोरी का चिंतन न करें। परोपकार की भावना यही है कि हम सब इतने शुभ चिंतक बन जाएं, अगर कोई की कमी दिखाई भी देती है, कोई लगता भी ये कम है, कमजोर है, या ये गलत हो रहा है, तो भी उसका वर्णन और चिंतन न करके, इधर उधर उस बात को फैला करके, बड़ा रूप दे करके हम विघ्न रूप न बने, लेकिन उस बात को कैसे हल किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, एक शुभ चिंतक वृत्ति से, शुभ भावना से, अपनी मनसा शक्ति के द्वारा उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार के सहयोगी बन सकते हैं, मैं समझता हूँ ये परोपकार है। और ऐसा परोपकार हर एक आत्मा को करना चाहिए, उसका स्वोपकार अपने आप हो जाएगा। इस समय आवश्यकता है हर एक आत्मा को परोपकार करने की, परोपकार, सबके ऊपर उपकार, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे मेरी इंसल्ट करने वाला हो, ग्लानी करने वाला हो, अपमानित करने वाला हो, लेकिन हम इतने अच्छी स्थिति में स्थित रहें। आज मेरा एक क्लास वहाँ भट्टी में हो रहा था, मुझे टॉपिक मिला था स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय कैसे हो, और परिस्थितियां भिन्न भिन्न रूप में, वैरायटी रूप में हर एक के सामने आती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे मेरे आगे तो कोई पेपर ही नहीं आया, आता ही नहीं है। मैंने मिसाल बताया कि हमारी दादी प्रकाशमणि जी जब भी क्लास में आती थी, कहती थी कि मैं तो अपने आप को सदा पेपर हाल में समझती हूँ, मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ तो समझती हूँ ये सब मेरा पेपर लेने वाले हैं, कोई भी किसी के द्वारा मेरे आगे पेपर आ सकता है, मुझे पास होना है, मुझे फेल नहीं होना है, ये पेपर हाल है। उन परीक्षाओं में तो फिक्स होती हैं डेट्स, 3 मास के बाद आएगा, 6 मास के बाद आएगा, 9 मास के बाद आएगा, 12 मास के बाद आएगा, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं जो रोज बाबा की पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ पढ़ती हैं, बाहर जाके पेपर देते, तुरंत पेपर कोई न कोई रूप में आ जाता है, किसी न किसी संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, बातों के रूप में, कोई कुछ अपमान कर देता है, कभी इंसल्ट कर देता है, कभी कोई बात हो जाती, कभी कोई बात, उसमें मेरी स्थिति कैसी रहती है, उसमें मैं पास हो सकता हूँ क्या? मैंने अपने आप को इतना अचल, लडोल, एक रस बनाया है, इतना मैंने अपनी स्थिति जमाई है, कुछ भी हो जाए, जैसे अंगद ने पैर जमा दिया, कितने भी महारथी सामने योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा रावण की दरबार वाले थे, उसने जमा दिया कि देख ले कौन हिलाता है, अगर हिला दो, अंगूठा भी हिला दो तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। मुझे तो बड़ी रमणीक कहानी लगती है, जबकि सीता पर उसका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसको निश्चय बहुत है कि उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। निश्चय की विजय है। हम सभी भी अगर इतने निश्चय बुद्धि हैं कि जब भगवान हमारे साथ है, उसका ये कार्य चल रहा है, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान का यज्ञ है, कोई क्या कर सकता है। कोई भी परिस्थिति लेकर के आए, किसी भी रूप में बड़ा पेपर आए, लेकिन पार लगाने वाला जो इतना समर्थ है, क्या हम उसको भूल जाते हैं? परिस्थितियां क्या करेंगी जो हमारी स्थिति को हिला दें? अगर निश्चय पक्का है, फाउंडेशन हमने निश्चय का मजबूत किया है, तो परिस्थिति तो ऐसे पार हो जाए जैसे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी जब कोई ऊंचाई पर चला जाता है, जैसे आप प्लेन से जाते हैं या ऊंचे स्थान पर जाते हैं, तो नीचे के सभी स्थान बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जैसे कुछ भी नहीं है। बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम बहुत ऊंची स्थिति में रहो, बहुत ऊंचे स्थान पर रहो। जब ऊंचाई पर रहोगे तो ये बातें जितनी भी आएंगी वो ऐसे लगेंगी कुछ भी नहीं है। अपना समय नहीं जाएगा, संकल्प नहीं जाएंगे, श्वास नहीं जाएगी, ऐसे लगेगा नथिंग न्यू, कोई नई बात है ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाबा हमारा इतना बड़ा है, उसके आगे बातें क्या हैं। तो ऐसे निश्चय के आधार से हर परिस्थिति का सहज सामना कर सकते हैं। वो परिस्थितियां मुझे मुझा न दें, हलचल में न ले आए, इसके लिए अपनी स्थिति पर हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फाउंडेशन पक्का हो, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत है तो कोई भी बात आएगी चली जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। बातें हमारी खुशी को छीन न लें, हमारे उमंग उत्साह को कम न कर दें, कोई भी बातें आएंगी पार हो जाएंगी। तो अपने उमंग उत्साह को सदा कायम रखना और अपने साथियों के उमंग उत्साह को भी बढ़ाना, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे संपर्क संबंध में आते हैं, अगर कोई ऐसी परिस्थिति ऐसे पेपर उनके सामने हैं भी, वो हमें सुनाते हैं, बताते हैं क्या करना चाहिए, सुनकर के हाँ में हाँ मिला लें, हाँ कहें ऐसा सब जगह हो रहा है, होगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे समय पर उनको ऐसी शक्तिशाली दृष्टि दें, ऐसा शक्तिशाली बाबा का कोई डोज दें जो आत्मा उसको जंप करके पार कर जाए। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए अगर हम अपने परिवार को एक संगठन के सूत्र में पिरोना चाहते हैं, एक मत बनाना चाहते हैं, तो बाबा हमें ऐसा कहते हैं, हरेक में विश्वास रख करके, फेथ एक बहुत बड़ी शक्ति है, विश्वास के साथ साथ रूहानी प्यार रखकर, रूहानी प्यार और विश्वास संगठन की एकता का सूत्र बन जाते हैं। और इस विश्वास और प्यार के आधार से अगर हम किसी को थोड़ा सा भी साथ देते हैं, सहारा दे देते हैं, तो आई हुई बातें उसके सामने बड़े रूप में आई हैं, लेकिन ऐसे लगता पार हो जाएंगे, हमारा कोई है। बाबा तो है, लेकिन महारथी आत्माएं भी, निमित्त आत्माएं भी, अगर उनको बताया जाए तो वो उनको विशेष शक्ति दें, विशेष सकास दें, विशेष मदद करें, ताकि वो आत्मा सहज पार हो जाए। ये हम सब का कर्तव्य है, ये परोपकार की भावना है। अगर कोई आत्माएं ऐसी दिखाई देती हैं, कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं, बहुत युद्ध चल रही है, या बहुत प्रकार के पेपर, कई आत्माओं के आगे बहुत प्रकार के पेपर आते हैं, कहते क्या करें, ये आ गया, ये जाता, ये आता, जैसे बाबा हंसी में कहते हैं ना, कुत्ता जाता, बिल्ली जाती, चूहा आता, एक के बाद एक आता ही है। ऐसे ही अगर कोई भी प्रकार का पेपर आता है, तो उसको पार करने का बल उन आत्माओं को मिले, उसके लिए हम विशेष उन आत्माओं को सकास दें, शक्ति दें, मदद करें, उनके प्रति बहुत शुभचिंतक भावना रखें। ऐसे नहीं, ये तो होता ही है, ये तो होगा ही, ये तो छटनी का समय है, ये तो जाने ही है, ये नेगेटिव संकल्प रच करके उनके मनोबल को गिराए नहीं। अगर हम किसी के मनोबल को बढ़ा देते हैं, उमंग उत्साह में ले आते हैं, और वो फिर से अपने पांव पर आ जाता है, तो बहुत दुआएं देता है, दिल से दुआएं देता है, कि आपने ऐसे समय पर मुझे मदद की, जब ये पेपर मेरे सामने था, ऐसी बात मेरे सामने थी, ऐसे समय पर आपने मुझे शक्ति दी, हिम्मत दिलाई और मैं इसको पार कर गया। वो दिल से दुआएं देता है। तो बाबा कहता है, बच्चे ये संगम का ऐसा समय है, परोपकार करो और सबकी दुआएं ले लो। दुआओं की शक्ति आपको बहुत सहज हर परिस्थिति से पार करा देगी। अगर आपके आगे कोई बड़ा पेपर आ गया, शरीर का आ गया, कोई पुराना हिसाब किताब आ गया, जैसे आदादी को हम देख रहे हैं, पेपर आया, पेपर है ना ये, तो अचानक इतना बड़ा चोट लगी और एक मास बेड पर रहना पड़ा, लेकिन ऐसे बाबा पार करा देगा इतनी सहज रीति से। डॉक्टर के पास गई, बॉम्बे में पहुंचते ही डॉक्टर कहता, क्यों सोई हुई दादी, क्यों सुलाया दादी को, उठाओ अभी, अब उठाओ, सोने की कोई जरूरत नहीं है। दो घंटा बिठा दिया, कहती चलो चलाओ, दादी अगर बैठेगी लेटी रहेगी तो लेटी ही रहेगी, आप लोगों ने क्यों सुलाया है। वंडरफुल बात है ना, कि एक महीना सोई और अभी भी डॉक्टर कहते थे और एक महीना 15 दिन सोना पड़ेगा, लेकिन उस डॉक्टर ने देखते ही दादी को कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, उठा दिया, बिठा दिया, चला दिया, छुट्टी भी दे दी हॉस्पिटल से। धीरे धीरे जो रिकवरी है हो जाएगी, कमजोरी तो हो जाती है शरीर की। अभी फिजियोथेरापी के लिए दादी को रोका है 15 दिन, लेकिन ठीक होकर के हम सबके बीच में जल्दी से जल्दी आएगी। गुजर दादी, जानकी दादी, आज रतनमणि दादी पहुंच गई, तीनों दादियां एक जगह पर पार्ला में। तो ऐसे समय पर दादियां एक दूसरे को, वहां रहते भी कभी भी दादी की मुख से ये शब्द नहीं सुना कि मैं बीमार हूं, मुझे कोई तकलीफ है, इतनी होते हुए भी। अब जब देखो याद प्यार भर के भेजती हैं, कल दोनों दादियों ने चिट चैट की, वो लिख करके भेजी, भर करके टेप में भेजी, आज सब सेंटर्स पर हमने भेजी है, कैसे दोनों ने रूह रियान किया है, कैसे हंसते बहलते बात करते, जैसे कुछ है ही नहीं। बहुत बड़े से पेपर को उन्होंने इतना सरल कर दिया जैसे है ही नहीं, खेल खेल में से पार हो रहे हैं। तो हम सबको भी बाबा कहता है, उन आत्माओं ने इतना दुआएं जमा की हैं, बाबा की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, हम सभी भी अगर सबकी दुआएं लें, सुख दें, सुख लें, दुआएं दें, दुआएं लें, तो कोई भी प्रकार का ऐसा पेपर आएगा भी तो हमारी स्थिति को बिगाड़ेगा नहीं, आएगा, पार हो जाएंगे, सहज हो जाएगा। तो इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहता है, बच्चे स्वउपकार भी करो, परउपकार भी करो, कभी भी ये नहीं संकल्प करो ये बदले तो मैं बदल जाऊं। एक हमारी ये भावना रहती है, ये तो कुछ तो बदले, मैं तो बहुत बदलता हूं, बदलती हूं, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, मैं क्या करूं। अब ऐसे संकल्प अगर हमारे रहते हैं तो जैसे हम उसको उससे भी इच्छाएं रखते हैं, भले वो दिल से करता है, कमजोर है, कोई संस्कार के अधीन है, परवश है, वो अपने आप को नहीं बदल सकता है, तो मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करूं, मैं बदल जाऊं, वो अपने आप बदल जाएगा। हमारे अंदर की ये परोपकार की वृत्ति है, वो बदल जाए तो मैं बदल जाऊं, वो सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, वो मेरे से बात करे तो मैं बात करूं। मैं समझता हूं ये लेने की भावना है, देने वाली आत्माएं तो मास्टर दाता की तरह देती हैं। हम सबको बाबा ने सिखाया है, सम्मान दो, प्यार दो, स्नेह दो, अपने आप उसको शर्म आएगी, अपने आप देगा आपको, आप देते चलो। तो दूसरों से लेने की अपेक्षा अगर हम देते जाते हैं, हरेक को बाबा ने, जैसे बाबा खुद दाता है, ऐसे अपने बच्चों को भी कहता, बच्चे मेरे समान मास्टर दाता बनो, सबको सत्कार दो, अपने आप देंगे, मांगो नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी भावनाएं रख करके हम सबको सत्कार देते, सम्मान देते, अपना मान भी दूसरों को दे करके, जैसे बाबा ने दिया है, करता सब कुछ है, नाम बच्चों का होता है, इसने किया, इसने किया, इसने किया, कभी भी अपने नाम का भी जैसे त्याग कर दिया, मान का भी त्याग कर दिया। हम सभी भी नाम मान शान की बजाय करण करावन हार बाबा की लीला को देखते चलें और परोपकार करते चलें। ओम शांति।